राघवेंद्र द्वारा अपनी हवेली पे रखी गई पार्टी में उसका इंटरव्यू लेने आई पूरी मीडिया टीम मौजूद वहां थी। वैदेही भी उनमें थी। पार्टी में वैदेही और मानव एक साथ बैठे थे। वो कब से उससे बात करने का मौका ढूंढ रही थी और सुमित्रा के जरिए उसे वो मौका मिल गया। राघवेंद्र ने जब वैदेही को मानव के पास देखा तो वो चौकन्ना हो गया। उसने लल्लन को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, लल्लन, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इस लड़की से बात करके इतना तो समझ आ गया कि ये कितनी तेज है। उधर देख, मानव उसी के साथ बैठा है। ध्यान रखना कि कहीं वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। भैया जी, आप कहो तो आज रात इस रिपोर्टर को ठिकाने लगाए देते हैं। वैसे भी इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे दो दिन पहले उस रिपोर्टर को। लल्लन ने वैदेही को देखकर कहा। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन राघवेंद्र उसके कहने का मतलब समझ गया। चुप कर, वो कोई लोकल न्यूज चैनल की एंकर नहीं है जिसके बारे में कोई जानता नहीं। ये वैदेही रघुवंशी है और पूरा इंडिया इसे अच्छे से जानता है। अभी इसका बाल भी बांका हुआ तो चैनल सहित पूरी जनता हाथ में मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतर आएगी। वैसे भी अभी कुछ दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है, राघवेंद्र लल्लन को समझा रहा था। भैया जी, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हम वैसे भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। कोशिश करो कि ये मुसीबत हमारे घर वालों से और हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। जी भैया जी, लल्लन ने जवाब दिया और दबे पांव जाकर वैदेही की टेबल के पास जाकर बैठ गया ताकि वहां से वो उन दोनों की बातें सुन सके। वैदेही और मानव चुपचाप खाना खा रहे थे। दोनों में से ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा था। भैया जी ने क्या हमें इनके खाने के कौर गिनने के लिए यहाँ बिठाया है? दोनों कब से चुपचाप बैठे हैं? लल्लन ने मुंह बनाकर कहा। वैसे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है वैदेही जी, मैंने आपके ज़्यादा शोज नहीं देखे, लेकिन जब दादा ने इंटरव्यू का बताया तो एक दो प्रोग्राम्स देखे थे, मानव से बातचीत शुरू करते हुए कहा। थैंक्स, वैदेही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, आप भी तो बाहर से स्टडी कंप्लीट करके लौटे हैं, आप कौन से फील्ड से हैं? पहले तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर को परस्यू करना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने बिजनेस को चुना। मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं चाहता हूं कि यहां के अनएम्प्लॉयड और गरीब लोगों के लिए कुछ करूं, मानव ने सादगी से जवाब दिया। आपके और आपके दादा के विचार कितने मिलते हैं ना, वो भी जनता की सेवा करना चाहते हैं और आप भी, कहीं आपने भी उनकी तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का तो नहीं सोचा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब चीज़ें बहुत बोरिंग और बकवास लगती हैं, मानव ने हंसकर कहा। दोनों के बीच हल्की फुल्की और अच्छी बातचीत हो रही थी। जैसा कि राघवेंद्र ने अपने इंटरव्यू में सबको हवेली घुमाने का कहा था, वो उस वादे को पूरा करना चाहता था। रात को उसने पूरी टीम के रुकने का इंतजाम हवेली में करवा दिया था। पार्टी खत्म होने के बाद सब सोने चले गए। वैदेही को रात को नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से वो टहलने के लिए बाहर गार्डन में आ गई। वो वहां लगे झूले में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। गांव का एनवायरनमेंट कितना फ्रेश होता है, वैदेही ने अपने बालों को कान के पीछे करके बोला। यहाँ एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। राघवेंद्र वहां से गुजर रहा था, उसने वैदेही की बात सुनी तो वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। सही कहा आपने वैदेही जी, गांव की तो बात ही निराली है, बोलते हुए राघवेंद्र की नज़र वैदेही पर गई। उसने फॉर्मल वेयर के बजाय सिंपल सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था। वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है इन कपड़ों में, आप इंटरव्यू लेते वक्त इस तरह के कपड़े क्यों नहीं पहनती? क्योंकि इंटरव्यू लेते वक्त प्रोफेशनल होना पड़ता है, वैदेही झूले से खड़े होकर बोली। आप चाहें तो इस पर बैठ सकती हैं, बरसों पहले मेरे बाबा ने आई के लिए बनवाया था, कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। आज झूले की आवाज़ सुनी तो कदम अपने आप ही सोर गए। तब तो इस झूले के साथ आपकी आई की बहुत सी यादें जुड़ी होगी, अगर मैं यहाँ पर बैठी तो उनकी इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। हाँ, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, राघवेंद्र ने खोए हुए स्वर में कहा। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, कहकर वैदेही वहाँ से जाने लगी, लेकिन राघवेंद्र ने पीछे से उसका नाम लेकर उसे बुलाया। वैदेही जी, राघवेंद्र के मुँह से अपना नाम सुनकर वैदेही उसकी तरफ मुड़ी। क्या हम कुछ देर बातें कर सकते हैं? उसने पूछा। वैदेही ने भी बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और वो दोनों वहाँ टहलते हुए बातें कर रहे थे। हम इंटरव्यू छोड़कर बीच में आ गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमने आप पर चिल्लाया भी, लेकिन फिर भी आपने इंटरव्यू को कैरी ऑन किया, वो काबिले तारीफ था। आई होप कि आपके मन में मुझे लेकर कोई गिला शिकवाना रह गया हो, ये हमारा काम होता है, पर्सनली हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, वैदेही ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। जवाब में राघवेंद्र मुस्कुरा दिया। उसने वैदेही की तरफ देखकर सोचा, क्या सच में ये उतनी ही मासूम है जितनी अब दिख रही है, या इसका असली चेहरा वो था जो आज शाम को मुझे सबके सामने जलील करने की कोशिश कर रही थी? कहाँ खो गए आप राघवेंद्र जी, लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, उसे चुप देखकर वैदेही ने पूछा। अब आपसे नाराज को लेकर जाएंगे कहाँ, कल को मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप हमारा इंटरव्यू लेने फिर आएंगी,
देख लीजिए वैदेही जी, आपको हमारे लिए इस बार पूरा टाइम निकालना होगा। अब तो मुंबई में ही मिलेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब रात काफी हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। कल आपकी हवेली का सूट हो जाए उसके बाद वापस मुंबई के लिए निकलना है, वैदेही ने जवाब दिया। राघवेंद्र ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे गुड नाइट बोलकर वैदेही वहां से सोने के लिए जा चुकी थी। वो दूर से उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद राघवेंद्र वापस उसी झूले के पास आया जहां पर कुछ देर पहले वैदेही बैठी हुई थी। उसके कानों में वैदेही के स्वर गूंजने लगे। तब तो इस झूले के साथ आपकी काफी यादें जुड़ी होगी। बार बार वैदेही की आवाज कान में गूंजने से राघवेंद्र गुस्से में चिल्लाया और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें भी कसकर बंद कर ली। ना चाहते हुए भी उस झूले से जुड़े हुए यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। एक आदमी सुमित्रा की आंखों को अपने हाथों से ढककर उसे कहीं ले जा रहा था। सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जिस आदमी ने उसकी आंखें ढक रखी थी वो कोई और नहीं, राघवेंद्र के पिता महेंद्र प्रताप सिंह थे। आहो, तू मला कुठे नेता हैस, सुमित्रा ने चहकते हुए कहा। तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या सुमी? जब हम तुम्हारी आंखों के आगे से हाथ हटा देंगे तब खुद ही देख लेना कि कहां लेकर आए हैं, महेंद्र प्रताप ने जवाब दिया। कुछ देर बाद वो लोग झूले के आगे थे और झूले को फूलों से सजाया हुआ था। महेंद्र ने अपने हाथ सुमित्रा की आंखों से हटा दिया था। झूला देखकर वो खुशी से चिल्ला पड़ी। ये आपने मेरे लिए लगवाया है? नहीं, तुम्हें तो बस दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। झूला तो मैंने पड़ोस वाली सुमन के लिए लगवाया है, महेंद्र ने उसे परेशान करते हुए कहा। आप भी ना, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं, सुमित्रा ने हंसते हुए अपने हाथ को धीरे से महेंद्र की छाती पर मारा। जी मैं क्या कह रही थी, जब आपने मेरे लिए झूला लगवा ही दिया है तो थोड़ा झूला भी दीजिए, महेंद्र ने उसकी बात पर हामी भरी और उसका हाथ पकड़कर खुद झूले पर बिठाया। वो उसे झूलाते हुए एक मराठी गाना गुनगुना रहा था जिस पर सुमित्रा खिलाकर हंस रही थी। राघवेंद्र अपनी यादों से बाहर आ गया था। उसने गुस्से में अपना हाथ झूले पर दे मारा।
जब आपने प्यार से मेरी आई के लिए ये झूला लगवाया था तो फिर बाद में आपका प्यार कहाँ चला गया जो आपने मेरी आई के साथ ऐसा घटिया सलूक किया? भले ही मैं दुनिया की नज़रों में लाख गलत होऊंगा, लेकिन मेरे इस गलत होने की शुरुआत आपसे ही हुई थी महेंद्र प्रताप सिंह, और मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, आप इसी के लायक थे, राघवेंद्र ने खुद से कहा। वो झूले के पास कभी नहीं आता था। वो उन कड़वी यादों से बचना चाहता था जो उस झूले से जुड़ी हुई थी। वो वहां से चला गया। अगले दिन वैदेही अपनी टीम के साथ राघवेंद्र की हवेली दिखा रही थी। इस बार कवरेज को कोई और रिपोर्टर हैंडल कर रहा था, वैदेही बस टीम के साथ मौजूद थी। हवेली में घूमने के बाद वो लोग उसके पिछले हिस्से में पहुंचे जहां पर भी भैंसों का तबेला था। ये वही जगह थी जहां पर उन्होंने रिपोर्टर को बांध कर रखा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राघवेंद्र प्रताप की हवेली के पिछले हिस्से में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पालतू जानवरों को रखा जाता है। इन्हें देखकर कह सकते हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के घर में आज भी हमारी ग्रामीण संस्कृति का पालन किया जाता है। ये उनका जीवंत उदाहरण है। वो रिपोर्टर हर एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। वैदेही ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि राघवेंद्र प्रताप को उस पर शक ना हो। अपनी तारीफें सुनकर राघवेंद्र भी फूले नहीं समा रहा था। शूट करते हुए पूरी टीम आगे निकलने लगी, लेकिन वैदेही अभी भी उस तबेले में मौजूद थी। वो छोटे बछड़े के पास गई और प्यार से उस पर हाथ फैला रही थी। मानव ने उसे ऐसे करते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं वैदेही को आसपास ना देखकर राघवेंद्र की नज़र भी पीछे गई। उसने वैदेही को वहां रुककर बछड़े को घास देते हुए देखा तो उसे भी अच्छा महसूस हुआ। शूटिंग टीम आगे निकल गई, लेकिन वैदेही अभी भी वहीं पर मौजूद थी। आओ, तुम कितने क्यूट हो, बच्चे चाहे इंसानों के हो या जानवर के, पता नहीं इतने मासूम क्यों होते हैं, वैदेही उसे सहलाते हुए प्यार से बातें कर रही थी। मेरा बस चलता तो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहती, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, वैदेही वहां से जाने लगी, लेकिन बछड़े ने उसका स्कार्फ अपने मुंह में ले लिया और उसे चबाने लगा। स्कार्फ खींचने की वजह से वैदेही ने मुड़कर देखा तो उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो तुम भी मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। वैदेही ने जैसे तैसे अपना स्कार्फ वहां से हटाया और तबेले से बाहर आने लगी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिरते गिरते बची। वैदेही ने खुद को संभाला और नीचे की तरफ देखने लगी तो वहां घास के नीचे कुछ गड़ा हुआ था। उसने आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने तुरंत हाथों से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्द ही उसकी आंखों के सामने एक कुल्हाड़ी थी। वो आगे से खून से सनी हुई थी और उसके ऊपर थोड़े से बाल भी लगे हुए थे। उस पर लगा खून सूख चुका था। उसे देखकर वैदेही हक्की बक्की रह गई और उसने जल्दी से उस कुल्हाड़ी को अपने स्कार्फ में लपेटा और उस जगह को फिर से पहले की तरह कर दिया। वैदेही ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर चारों तरफ देखा। उसे कोई नहीं नजर आया तो वो दबे पांव वहां से दूसरी तरफ चली गई।